नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट्स आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का कल नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ओमान में भारतीय राजदूत अमित नारंग से दुर्घटनाग्रस्त जहाज एमवी प्रेस्टीज फैल्कन की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के चार छात्रों को हिरासत में लिया। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में सावन के प्रत्येक सोमवार को स्पर्श दर्शन एवं सभी प्रकार के दैनिक पास निरस्त रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से यात्रा से बचने और अपने घरों में रहने को कहा है। अब समाचार विस्तार से। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट्स आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का कल नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कीर्ति की कल्पना आधुनिक आईसीटी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के आधार पर प्रतिभा को पहचानने का तंत्र विकसित करने के लिए की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा की पहचान करना है। इस पहल का लक्ष्य सभी राज्यों को शामिल करके 2024-25 में 20 लाख खेल प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना है। कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। इस चरण में 70 केंद्रों पर 3,62,683 पंजीकरण हुए। इच्छुक एथलीटों का मूल्यांकन 11 स्पर्धाओं में हुआ था। यह स्पर्धाएं हैं तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ओमान में भारतीय राजदूत अमित नारंग से दुर्घटनाग्रस्त जहाज एमवी प्रेस्टीज फैल्कन की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य मंत्री ने कहा कि आईएनएस टैग द्वारा बचाए गए 8 भारतीय तट पर पहुंच गए हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय का पार्थिव शरीर भी मिल गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सरकार हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने बचाव अभियान में जुटे भारत और ओमान के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ पार्टियों द्वारा हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करना निराशाजनक है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के लेख का जिक्र किया जिसमें नकारात्मक माहौल और सुरक्षा गतिविधियों तथा इनके देश में प्रभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही के हमले से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए हिंसा भड़काने वाले शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार श्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट परीक्षा की दोबारा परीक्षा ठोस स्तर पर होनी चाहिए और इससे पूरी परीक्षा की सुचिता प्रभावित होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आज नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। चल रही जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने जो कुछ भी कहा है, अगर इसका खुलासा होता है तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग इससे बचने के तरीके ढूंढेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेडी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की एक पीठ ने सामाजिक सरोकार के मद्देनजर नीट यूजी 2024 की विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई की शुरुआत की। पीठ ने 5 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ये प्रमाणित करें कि पेपर लीक प्रणालीगत थी और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के दायर अपने हलफनामे में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के खुलासे के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना अनुचित होगा और लाखों योग्य उम्मीदवारों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। देशभर में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और सरकारी तथा निजी संस्थानों में अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सप्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी परीक्षा एनटीए द्वारा संचालित की जाती है। इससे पहले न्यायाधीश जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा था कि परीक्षा की सूचिता से छेड़छाड़ की गई है। पीठ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय अंतिम विकल्प होगा। भारत में बढ़ते हरित ईंधन के इस्तेमाल से जून में प्राकृतिक गैस की खपत 7% बढ़ी है। देश में प्राकृतिक गैस की खपत इस महीने पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। देश भर में लोग खाना पकाने के लिए हरित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष जून में 5,594 मिलियन मीट्रिक मानक घर मीटर खपत हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शहरी परिवहन क्षेत्र में भी इसकी मांग बढ़ रही है। हरित ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत जून में 2.6% बढ़कर 20 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉ जी के पॉल ने कहा कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन छात्रों के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और उनके कमरे सील कर दिए हैं। इन छात्रों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में सावन के प्रत्येक सोमवार को स्पर्श दर्शन एवं सभी प्रकार के दैनिक पास निरस्त रहेंगे। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता की खबर है कि वाराणसी में आज मंदिर की सुरक्षा, दर्शन, पूजन और यातायात नियमों को लेकर वाराणसी पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एवं अभिसूचना सूर्यकांत त्रिपाठी के निर्देश में दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री त्रिपाठी ने बताया कि 21 जुलाई की आधी रात से अगले आदेश तक गौदलिया से मैदागिन तक 9 व्हीकल जोन रहेगा। सावन पेट्रोकॉल के दौरान निश्चित समय में वीआईपी भक्तों को दर्शन और पूजा की अनुमति दी जाएगी। सावन के हर सोमवार को मंदिर के अंदर एक भी लॉकर की सुविधा नहीं दी जाएगी। कोयला मंत्रालय ने बताया कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 इस समय भारत में है। छत्तीसगढ़ में स्थित गेवड़ा और कुसमुंडा खदाने दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे स्थान पर है। यह खदाने कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह सूची worldatlas.com द्वारा जारी की गई थी। गेवड़ा और कुसमुंडा खदाने एक साथ मिलकर सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती है, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। गेवड़ा ओपन कास्ट खदान का परिचालन 1981 में शुरू हुआ था, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है। गेवड़ा ओपन कास्ट खदान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 59 मिलियन टन का उत्पादन किया है। इसमें अगले दशक के लिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। इस बीच कुसमुंडा खदान ने वार्षिक वर्ष 2023-24 में 50 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से यात्रा से बचने और अपने घरों में रहने को कहा है। बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम को देखते हुए ढाका में भारतीय उच्चायोग ने परामर्श में लोगों से कहा है कि किसी भी आपात स्थिति और सहायता के लिए उच्चायोग तथा सहायक उच्चायोग के आपातकालीन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ढाका उच्चायोग का आपातकालीन नंबर है 880193740591। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गाजा पट्टी में तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम के अपने आह्वान को दोहराया है। भारत ने बिना किसी शर्त बंधकों की रिहाई का भी आह्वान किया है। बुधवार को पश्चिम एशिया पर एक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के उप प्रतिनिधि आर रविन्द्र ने कहा कि कई वर्षों तक विभिन्न तरह से फिलिस्तीन को दी गई विकास सहायता संबंधी धनराशि लगभग 120 मिलियन अमरीकी डॉलर है। वाशिंगटन की दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि परिषद की मांग किए जाने के लगभग चार महीने बाद गाजा में तत्काल संघर्ष विराम लागू करने के लिए हो रही वार्ता में प्रगति हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।